ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஹரி ஓம். பூஜ்ய மாதாஜிக்கு புனிஷி சரணமே கோட்டி கோட்டி வந்தன். மாதாஜி कई उत्सव करके हमारे बीच में बधा रही है. आखिरी राधाष्टमी भी वहां वृंदावन की जो धारा है उसी तरह से पूज्य माता जी ने वहां मनाई. और यह सब पुनीत के जो पूरा महीना आसों और भादों की शुरुआत उसमें माता जी पधारी, वह ईश्वर की बड़ी कृपा है. माता जी हमें ईशावासी उपनिषद पर अनुग्रहित करेगी उनके प्रवचन से. माता जी के यहां पधारने से हमें बहुत ही खुशी है. हरेक ट्रस्ट मंडल सत्संगी, हरेक श्रोता और जो भी यह प्रवचन वेबसाइट से हजारों की संख्या में दुनिया भर में सुन रहे हैं, सभी आनंदित होते हैं कि पूज्य माता जी की पुनीत वाणी का हमें ईशावासी उपनिषद पर प्रवचन धारा मिलेगी. पूज्य माता जी को वंदन करते हुए हरिओम.
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, उमापति महादेव की जय. पवन सुत हनुमान की, जगदम्बा मैया की, सत्य सनातन धर्म की. हरि ओम, हरि ओम, हरि वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तंति दिव्येस्तवे वेदैशांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यमशामगा ध्यानावस्थितत्कतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये. इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्रे भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्य व्याप्तिदेव्ये नमो नमः. ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. आराधे गोपाल भज मन श्री राधे, आराधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे. आराधे गोपाल भज मन श्री राधे. सदघन चिदघन आनंद घन कल्याण गुण गण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार पार ब्रह्म परमात्मा भगवत चरणानुरागी नाना नामों में नाना रूपों में उपस्थित मेरी अपनी ही पवित्र प्रिय अभिन्न आत्मा महामहिम प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ प्रेमपुरी आश्रम के इस पावन सभागार में बैठे हुए जहां नित्य प्रति संतों का दर्शन और उनकी वाणी श्रवण करने का आप सब लोग परम आनंद लेते हैं, परम लाभ लेते हैं। आइए भगवान की कृपा से जो समय हमें मिला है इस पर कुछ विचार करें। विचार करने के लिए अब की बार का जो विषय आधार लिया गया ईशावास्य उपनिषद हमें इस जगत के विषय में जगत क्या है और परमात्मा की सर्वव्यापकता ईशावास्यमिदं सर्वम पहली बात कही गई कि संपूर्ण जगत ईश्वर से आच्छादित है। यह जो जगत है ईशावास्यमिदं जगत ये सारा संसार सारा जगत जिस जगत में हम रह रहे हैं और इस जगत के का स्वरूप क्या है और इसमें मैं क्या हूं। मैं और ये जगत जगत और मैं क्या है इस विषय पर हम विचार करें। शांति से भी गंभीरता से हम विचार करते हैं तो जीवन में व्यक्ति सारा समय अपनी परिस्थितियों को सुधारने में ही लगा रहता है। हमारे जीवन की परिस्थितियां अनुकूल हो जाएं, परिस्थितियों के सुधार में लगा रहता है। मैं कहती हूं परिस्थिति के सुधारने में जितना लगा हुआ है उतने यदि व्यक्ति परिस्थितियों को न सुधारते हुए अपने स्वभाव को सुधार ले तो परिस्थितियां अपने आप सुधर जाएंगी। और स्वभाव सुधरता है व्यक्ति का केवल सत्संग से स्वाध्याय से योग से जप से ध्यान से सत्कर्म से। स्वभाव में जो परिवर्तन आता है व्यक्ति अपने स्वभाव को न बदल करके अपनी परिस्थितियों को बदलने में लगा हुआ है। तो इसलिए आइए सत्संग के माध्यम से हम अपने स्वभाव को बदलें। और जो स्वभाव हमने अपना मान लिया है स्वभाव से तो हमारा स्वरूप अत्यंत निर्मल है पवित्र है। जो हमारा स्वस्वरूप है आत्म स्वभाव जिसमें हमारे जैसे जल स्वभाव से बहुत निर्मल है स्वभाव से जैसे आकाश से जब जल की बूंद पृथ्वी में आती है तो बड़ी स्वच्छ होती है बहुत निर्मल होती है। और यहां आने के बाद वो जल की बूंद जैसा संग करती है एक बूंद धूल के साथ मिल गई उसका रंग धूल वाला हो गया वो मैली हो गई और दूसरी बूंद वही बूंद एक केले के पत्ते में गिर गई केले का रस बनकर वो कपूर बन गई और वही एक बूंद सीप के मुंह में गिर गई तो मोती बन गई और वही एक बूंद जल के सर्प के मुंह में चली गई तो वो विष बन गई। इस प्रकार बूंद तो एक है पर उस एक बूंद ने जैसा जैसा संग किया वैसा वैसा वो बन गई। उसी तरह से स्वभाव से तो हम सब बड़े पवित्र हैं निर्मल हैं भगवान ने हमें निर्मल पवित्र स्वभाव दे करके इस संसार में भेजा और हमारा स्वभाव बिगड़ गया। बोले किसके कारण स्वभाव बिगड़ा? हमारा अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण। तो जीवन की ये नासमझियां अज्ञानता होंगी दूर कैसे? बोले सत्संग से होंगी। इसलिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमें सत्य संग मिले, सत शास्त्रों का संग मिले बड़े, क्योंकि और दूसरी बात, बहुत संत हमेशा आप लोगों को एक ही बात कहते हैं, दुर्लभो मानुषो जन्म। ये मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म हमें मिला, तो ये मनुष्य जन्म मिला है तो इस मनुष्य जन्म की इतनी जो बड़ी बात कह दी जाती है दुर्लभम मानुषम जन्म, तो इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता क्या है? यदि हम इस बात पर विचार करते हैं तो दुर्लभता इसी बात की है कि जो सत्संग मनुष्य के जन्म में हमें मिलता है सो सत्संग हमें अन्य किसी योनि में प्राप्त नहीं होता। सारी योनियां, यहां तक के देव योनि को बड़ा श्रेष्ठ माना गया है, देवता लोग, परंतु देवताओं के पास भी ये परिवर्तन करने का साधन उनके पास भी नहीं है। देवता भी चाहे भोग तो भोग सकते हैं परंतु कुछ नया करें तो बोले देवता लोग भी नहीं कर सकते। जो कार्य देव नहीं कर सकते हैं तो भला अन्य योनियों के लिए कैसे संभव हो सकता है? अन्य सारी जितनी भी योनियां हैं केवल केवल प्रारब्ध भोगना, प्रारब्ध भोगना उनकी व्यवस्था है। प्रारब्धानुसार जिसको जैसा भोग मिला है उसके अनुसार वो भोगते हैं और प्रारब्ध भोग भोगने के उपरांत वो समाप्त हो जाते हैं। ये व्यवस्था, ये लाचारी सबके पास है, परंतु मनुष्य के पास एक भगवान ने विशेषता दे रखी है, प्रारब्ध भोग भोगने के साथ साथ कुछ नया करने की, नया सोचने की, नया विचार करने की, नया चिंतन करने की जो क्षमता है, बुद्धि है, वो ईश्वर ने मनुष्य को दिया है। यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए इस मनुष्य जीवन में आकर के हमें अपने उस विचार से क्या कर लेना चाहिए? बोले अपने अध्यात्म स्वरूप को प्राप्त करना चाहिए। इस प्रसंग पर मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही कि माँ देवभूति भगवान से प्रश्न करती है, कपिल से, अपने ही पुत्र से, बेटा इंद्रियां बड़ी दुष्ट हैं, ये विषयों के संग में चली जाती हैं, विषय इंद्रियों में आ जाते हैं जिसके कारण चित्त बड़ा चंचल हो जाता है और चित्त में कभी शांति नहीं होती है, निरंतर अशांति बनी रहती है। भोगों को प्राप्त करने के उपरांत भी ये एक अशांति, अतृप्ति निरंतर बनी रहती है, इसका क्या कारण है? विषय, यह इंद्रियां विषयों को भोगने के लिए विषयों की ओर दौड़ती हैं और इंद्रियों के भोग प्राप्त होने के बाद भी शांति नहीं होती, फिर भी अशांति बनी रहती है, इसको क्या करना चाहिए? यही पहला प्रश्न है। माँ देवभूति ने जो भगवान कपिल से पूछा, माँ के इस पूछने पर भगवान ने एक ही उत्तर दिया, माँ योग अध्यात्मकम, माने योग अध्यात्म पुरुष निशेष, निशेष की प्राप्ति के श्रेय की प्राप्ति करनी चाहिए। बोले किसके द्वारा? अध्यात्म योग के द्वारा। अध्यात्म योग क्या है? बोले अपने आप, अपने भीतर, अपने आप से जुड़ करके, और हम सब लोग अपने स्वभाव से, अपने आप से हट करके बाहर की ओर दौड़ रहे हैं, निरंतर विषयों के संग में और इंद्रियों के घोड़े में बैठकर विषयों की ओर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, न जाने ये दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले। गंभीरता से विचार करो तो दिन रात इंद्रियों में, इंद्रियों के अश्व में, घोड़े में आरूढ़ होकर हमारी वृत्तियां संसार की ओर दौड़ती जा रही हैं। और जितना संसार की ओर दौड़ते जा रहे हैं, संसार में दौड़ते हुए सफलता मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, आदर मिल रहा है, धन मिल रहा है, ये जितनी चीजें हमें संसारिक मिल रही हैं, तो हमें क्या समझना चाहिए? इन सब को पाकर के हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारी बड़ी उन्नतियां हो रही हैं। मान मिला, सम्मान मिला, आदर मिला, सत्कार मिला, धन मिला, सफलताएं मिली, ये सब चीजें मिली, परंतु ये मिली तो इन्हें पाकर क्या समझना चाहिए हमें कि यही हमारा विकास है, यही हमारी उन्नति है? बोले इन सब को पाकर हम क्या समझते हैं, और ये सब नहीं मिलती है तो जीवन में हम सोचते बड़े असफल रहे, हमें कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं मिला हमें। और जब मान मिला, सम्मान मिला, आदर मिला, प्रतिष्ठा मिली, वैभव संपत्ति मिली, तो हमने समझ लिया कि बस हमें सब कुछ प्राप्त कर लिया। ये सब मिला तो जबकि समझना ये चाहिए, ये सब माया के पदार्थ जो मिले, परंतु हम उतना अपने आप से दूर हो गए अथवा भगवान से दूर हो गए। भगवान जिनको अपने से दूर करते हैं, बोले उन सब को ये सब देते हैं, क्योंकि इन सब को पाकर हम इन्हीं सब में उलझ जाते हैं और इन सब को ही हम अपना वो मानने लगते हैं, अपने जीवन की प्राप्ति ही इन्हीं को मानने लगते हैं। इसलिए भक्त भगवान विचार करो तो ये सब पाकर भगवान ने आपको अपने आप से दूर किया, जैसे एक छोटा सा बच्चा जिसे अपनी माँ की गोद बहुत प्यारी होती है, बच्चा माँ को छोड़ना नहीं चाहता है, माँ के साथ चिपका रहता है, माँ की गोद से उतरना नहीं चाहता, परंतु कुशल माँ क्या करती है, बच्चे को अपनी गोद से उतारने के लिए, अलग करने के लिए उसके आगे कुछ खिलौने रख देती, 2-4, 10 रुपए के खिलौने छोटे छोटे उसके आगे रख देती जमीन पर। तो बच्चा जैसे उन खिलौनों की ओर देखता है, उन खिलौनों से आकर्षित होता है, माँ की गोद से उतरकर वो बच्चा खिलौनों के साथ खेलने लगता है, माँ हट जाती है, अपना काम करने लगती है। तो जैसे बच्चा माँ की स्नेह भरी, ममता भरी, आनंद भरी गोद को उन खिलौनों के लिए छोड़कर छोड़ देता है, उसी तरह से हम संसार के इन खिलौनों के समान, माया के इन खिलौनों के समान, इन सब को प्राप्त करके भगवान की अनन्यता, भगवान का प्रेम, भगवान का स्नेह हम सब जीवन से छोड़ देते हैं, उससे दूर हट जाते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ था कि हमें अध्यात्म हटाता नहीं है, हमें अपने आप से जोड़ता है, हमें अपने से जुड़ना है। बहुत से लोग कहते हैं ना, हमने अपनी अपने आप को उस संस्था से जोड़ लिया है, उससे जोड़ लिया है, परंतु हमको किससे जुड़ना है? हमें किसी संस्था से नहीं जुड़ना है, हमें किसी संप्रदाय से नहीं जुड़ना है, हमें किसी प्रतिष्ठान से नहीं जुड़ना है, हमें किसी उससे नहीं जुड़ना है, योग अध्यात्मकम अपने आप से जुड़ना है, अपने आप से जुड़ना है। हम अपने से जुड़े, क्योंकि क्यों जुड़े? बोले इसलिए जुड़ के देखो, मैं कई बार कहती हूँ, ये जिंदगी महज 4 कदम की यात्रा है, याद रखो, ये जिंदगी महज 4 कदम की यात्रा है, जिसमें से 2 कदम मैं, मेरा, मेरी के साथ आप जी लिए हो, 2 कदम अब तू तेरा, तू तेरा, तू तेरा करके और संसार में जीना शुरू करो। 2 कदम तो आप जिए हो, मैं आज तक जो जिए, बोले मैं मेरी के साथ जिए, अब तू उससे हट करके अब जो 2 कदम है, तू और तेरा, इसे स्वीकार करके जियो, तू और तेरा, ये स्वीकार करके जियोगे। देखो ऐसी एक बात कहूं कि मैं आपसे कहती हूं कि आप इस बात को अजमा के देख लो, परीक्षा करके देख लो, तू तेरा कहकर जियो, ये परीक्षा करके देखो। बोले अजमा करके देखो, रुपए में 1 आना अजमा लो, जब आप एक पैसा अजमाओगे ना, तो रोज रोज एक 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 पैसा बढ़ाते चले जाना है, धीरे धीरे बढ़ा, तू तेरा ये कहकर इसे बढ़ाते चले जाना। रोज एक एक पैसा बढ़ाओगे तो एक दिन, जिस दिन आपका पूरा एक रुपया हो जाएगा ना, उस दिन समझना हमने जीवन में कर्म योग किया है। वही आपके लिए जीवन का कर्म योग हो जाएगा, वह योग आपको अपने साथ जुड़ने वाला। योग का मतलब ही होता है अपने आप से जुड़ना, योग का मतलब जुड़ना है, अपने आप से जुड़ना है। हम जुड़े केवल इंद्रियों के साथ, हम जुड़े केवल स्थूल शरीर के साथ, कभी उससे भीतर, अध्यात्म का अर्थ ही ये है, इस शरीर के अंदर क्या है, इस शरीर से बाहर क्या है, ये सबको दिख रहा है। इस शरीर से बाहर क्या है, शरीर सहित बाहर क्या है, ये सब कोई देख पा रहा है, सब कोई देख रहा है, परंतु अध्यात्म दृष्टिवान पुरुष वो है जो इस शरीर से भीतर क्या है वो देखता है। और ये दृष्टि बाह्य के साथ जुड़ती है, बाहर के साथ जुड़ती है, तो ये व्यवहारिक संसार नजर आता है। और जब ये दृष्टि अपने से जुड़ती है तो तब विवेक दृष्टि कहलाती है। और उस विवेक दृष्टि से अपने भीतर क्या है वो हमें दिखाई पड़ता है। जब दिखाई पड़ता है तो तभी हमें ईशावास से भी समझ में आएगा नारायण। जब तक हमारी दृष्टि भीतर की ओर नहीं होगी, हम सोचें कि हमें ईशावास से समझ में लाने के लिए पहले अपने आप को अपने आप से जोड़ने के लिए हम किस तरह से अपने अंदर जुड़ सके। एक मार्ग तो अध्यात्म का मार्ग है, जिसे ज्ञान का मार्ग कहते हैं। और अपने आप से जुड़ने के लिए कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं अपने आप में अपने लिए विचारने पर मार्ग मेरे लिए कठिन हो जाता है, मैं नहीं विचार सकता, सर्व साधारण के लिए, सर्व सुलभ, सर्व सामान्य, सर्व साधारण के लिए मार्ग है, दूसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग, कर्म का मार्ग। मार्ग तो तीनों ही हैं, परंतु इस समय जिस मार्ग को पर हम चलने जा रहे हैं वो मार्ग है ज्ञान का मार्ग। और ये इस ज्ञान के मार्ग से, ये मार्ग ज्ञान किसी चीज को बनाता नहीं है नारायण, याद रखना। ज्ञान में कोई निर्माण विभाग नहीं है, ज्ञान तो जो जैसा है उसको वैसा दिखाता है, बताता है, जो जैसा है उसको वैसा दिखाना। सूर्य कभी ये अपना प्रकाश देते समय ये भेद नहीं करते हैं कि ये गंगा का पवित्र जल है या बिल्कुल गंदा नाला है। सूर्य का काम तो है प्रकाश देना, वो गंदे नाले को भी प्रकाश देते हैं, गंगा के पवित्र जल को भी देते हैं, और गरीब की झोपड़ी को भी प्रकाश देते हैं, अमीर के महल को भी प्रकाश देते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश देने में कोई पक्षपात नहीं करते, वैसे ज्ञान पक्षपाती नहीं होता, याद रखना। ज्ञान का काम तो है प्रकाश देना, परंतु यदि निर्माण का कार्य विचार करके देखें, हम सब लोग, ज्ञान का काम तो है जो जैसा है वैसा समझना। इसलिए ज्ञान समझने के लिए प्रमाण का बल, जिसमें प्रमाणिकता पूर्वक कोई बात कही जाए, और प्रमाण रूप में हमारे यहाँ वेद माने गए हैं, वेद को ही प्रमाण मान करके चला गए। और वेद में जो वेद का भाग है वो उपनिषद है, तो उपनिषदों में ईशावास्य उपनिषद एक अपनी विशिष्ट महिमा रखती है। विशिष्ट महिमा ये है कि ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद का संहिता भाग है, मंत्र भाग है, और जिसमें से 40वां अध्याय है, 18 मंत्र हैं, जिसके लिए ये भी कहा जाता है कि यही 18 मंत्र से ही आगे चलकर भगवत गीता प्रकट हुई, जिसमें 700 श्लोक बने, परंतु बहुत छोटी और बड़ी स्पष्ट उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। परंतु इस उपनिषद को हम पूर्व में भी कई बार संतों से आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और समझा होगा, परंतु मैं जितनी बार पढ़ू, जितनी बार समझो, जितनी बार इसको सुनोगे, जितनी जितनी इसकी पुनरावृत्ति होगी, उतना उतना विषय आपकी बुद्धि में स्पष्ट होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। इसीलिए बार बार उस चीज को सुनना, उसी का नाम स्वाध्याय है। मैंने आप लोगों से कहा कि भगवान ने हमें कृपा की है और अपने स्वभाव को संवारने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है, अध्यात्म से जुड़ने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग माने शास्त्र का संग, सत्पुरुषों के संग से शास्त्र का हमें संग मिले, सतशास्त्र का, सत साहित्य का हमें संग मिले, जिससे हमारी बुद्धि सत्य के साथ जुड़ सके, सत्य को जान सके, सत्य को पहचान सके। भगवान ने हमें जो ये साधन दिया है, इसको हम पूर्ण मनुष्य शरीर का, इसे हम सार्थक कर सके। तो इसलिए आज के दिन मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमें भगवान ने सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान ने हमें जो ये शरीर दिया, उनकी बहुत बड़ी कृपा अहेतु की, इसीलिए कहा गया है अकारण करुणा वरुणालय जब कृपा करते हैं तो तब हमें ये मनुष्य शरीर, कबहू की करुणा निधि करुणा कर दे ही देत ईश अहेतु स्नेह। भगवान के स्नेह का, भगवान की कृपा का कोई अंत नहीं, अकारण अकारण करुणा के तो मानो वो सागर ही है, इसीलिए उनको कहा गया अकारण करुणा वरुणालय। तो करुणा करके करुणा निधान ने हमें एक बहुत बड़ा साधन उपलब्ध करा दिया, जिस साधन पर सवार होकर, जिस साधनारूढ़ होकर, साधन में आरूढ़ होकर हम अपने गंतव्य को, लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ये साधन भगवान का दिया है, इसीलिए मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, किसी ने हमें दिया, देने वाले ने बहुत कृपा करके दिया और लेने वाले ने शान से कहा ये मेरा है।